ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज अंतर मंत्रालय समिति राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि समिति में कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। सिक्किम में इस महीने की 4 तारीख को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और 81 लोग लापता हैं। मृतकों में थलसेना के 9 जवान भी शामिल हैं। वस्तु और सेवाकर परिषद ने इस वर्ष मार्च तक जारी मांग आदेशों के संबंध में अपील दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। ये फैसला कल जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में लिया गया। जीएसटी कानून के अनुसार सामान्यतः कर आकलन आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर दायर करनी होती है, जिसे अधिकतम 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है। परिषद ने जीएसटी पंजीकृत कारोबारों को मौजूदा 10% के स्थान पर 12.5% की कर मांग के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय भी लिया है। एक अन्य निर्णय में जीएसटी परिषद ने जीएसटी नियमों में संशोधन करते हुए जब्त की गई संपत्ति को 1 वर्ष पूरा होने के बाद मुक्त करने की अनुमति दे दी है। जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी पंजीकृत इकाइयों द्वारा कर भुगतान न करने की स्थिति में उनके बैंक खाते और संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख में यह पहला चुनाव था। 4 अक्टूबर के चुनाव में 77% से अधिक मतदान हुआ था। इस चुनाव में परिषद की 26 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से है। मतगणना से 85 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है। इजरायल में हमास के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है और 1500 लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमास लड़ाकों के 17 परिसरों तथा 4 ऑपरेशनल कमांड केंद्रों को निशाना बनाया है, जिनमें 230 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की कड़ी निंदा करते हुए युद्ध की घोषणा की है। इस बीच विश्व के प्रमुख नेताओं ने हमास आतंकियों के इजराइल पर हमले की निंदा की है। हमास के हमले के बाद फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने रामलल्ला में रह रहे भारतीय नागरिकों से आपात स्थिति में संपर्क करने को कहा है। कार्यालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 0592916418। व्हाट्सएप नंबर है 9705929614। चीन के हांगचोउ में आयोजित हुए एशियाई खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने वर्ष 2018 में जकार्ता में बनाए गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को 37 पदकों से पीछे छोड़ दिया है। ये दूसरा अवसर है जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों यानी कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में से किसी एक में 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारतीय एथलीट आज शाम 5:30 बजे समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिन में 2 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम इंडिया ने 2-1 से दमदार जीत हासिल की थी। विश्व कप में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक 12 बार एक दूसरे से टकराई है और इनमें से 8 मौकों पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 4 मैच में जीत मिली है। भारत नागपट्टिनम से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मंगलवार से मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। ये नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कनकेसन तुरई बंदरगाह पहुंचेगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को 6500 रूपये किराया देना होगा। इस मशीनी नौका सेवा का परीक्षण रविवार और सोमवार को होगा और औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।